आन्या ने सारा सामान सेट करने के बाद खाना बनाया। अन्वय कमरे में बैठा कल की लेक्चर की तैयारी कर रहा था, अपनी नोट्स निकाल रहा था, उन्हें देख रहा था। आन्या बाहर आई और दोनों की प्लेट टेबल पर रखने के बाद उसकी तरफ घूमकर बोली, खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। अन्वय ने आवाज सुनकर नजरें उठाकर उसे देखा, फिर वापस नजरें नोट्स पर टिकाते हुए बोला, अपना फोन ले लो और उसमें मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, अगर कभी बहुत जरूरी हो तभी मुझे फोन करना। फालतू में अगर फोन घुमाया तो नंबर ब्लॉक कर दूंगा, उसके बाद जरूरत पर भी मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगी। उसकी बात सुनकर आन्या का मुंह बन गया। उसने धीरे से कहा, तुम जैसे सड़ियल इंसान को फोन करना भी कौन चाहता है, बड़े आए मेरे नंबर ब्लॉक करने वाले। हुँ? उसने कहा तो धीरे से, पर अन्वय के कानों में उसका कहा हर शब्द साफ साफ सुनाई दिया। उसने नजरें उठाकर उसे गुस्से से घूरा तो आन्या भी बदले में उसे घूरते हुए उसके पास आ गई और अपना फोन लेकर वापस चली गई। खाना खाना हो तो आ जाओ, वरना बाद में अकेले खाते रहना, वो भी ठंडा खाना। अन्वय ने बदले में कुछ भी जवाब नहीं दिया तो आन्या चिढ़ते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई और अपना खाना खाने लगी। उसके बाद उसने अपनी प्लेट धोई और आकर अपनी जगह पर लेटकर फोन चलाने लगी। अन्वय ने बीच का पर्दा खींच दिया तो आन्या ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और अन्वय को घूरते हुए वापस फोन में लग गई। कुछ देर बाद अन्वय उठा और हाथ धोकर खाना खाने के बाद बर्तन धोकर वापस आया तो नज़रें आन्या की तरफ चली गई, जो फिर से उल्टी पड़ी हुई थी। रात के 11 बज रहे थे। अन्वय ने कुछ सोचकर उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो देखा फोन में वीडियो चल रही थी। आन्या के कानों में ईयरफोन लगी हुई थी और वो मज़े से सोने में लगी हुई थी। अन्वय ने उसे देखकर अजीब सा चेहरा बनाया, फिर ईयरफोन निकालकर फोन बंद करके टेबल पर रख दिया। उसके बाद उसे चादर से अच्छे से कवर करने के बाद अपनी जगह जाकर लेट गया। उसके दिलो दिमाग पर आन्या ही छाई हुई थी। उसने करवट बदलकर आँखें बंद कर लीं। अगली सुबह अन्वय बालकनी में एक्सरसाइज कर रहा था। अभी 5:30 ही बज रहे थे। आन्या की नींद खुली तो वो उठकर बाथरूम में चली गई। उसके बाद ठंडी हवा खाने के लिए बालकनी की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही बालकनी में कदम रखा, नजरें अन्वय पर चली गईं, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी और उसने अभी शर्ट नहीं पहनी हुई थी। उसके चौड़े कंधे और आकर्षक बॉडी देखकर आन्या का दिल जोरों से धड़क उठा। तभी उसकी नज़र अन्वय के बाएं कंधे पर बने निशान पर गई और आन्या ने उसे गौर से देखते हुए कहा, ये तुम्हारे कंधे पर कैसा टैटू बना हुआ है? आवाज़ सुनकर अन्वय चौंक गया और झट से उसकी तरफ घूमा। आन्या ने पहली बार इतनी अच्छी और आकर्षक बॉडी देखी थी। उसकी मजबूत मांसपेशियां उभर कर सामने आ रही थीं और आन्या का गला सूखने लगा था उसे ऐसे देखकर। वो एकटक उसके निरावरण धड़ को देखते हुए थूक निकलकर अपना गला तर करने लगी। अन्वय ने उसकी प्यासी निगाहें और गर्दन पर होती हलचल देखी तो झट से रेलिंग पर लटक रही अपनी टी शर्ट उठाकर पहन ली और उसे घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो हवा खाने आई थी। सुबह सुबह ठंडी हवा खाने से दिन की शुरुआत खूबसूरत होती है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी दिन की शुरुआत इतनी खूबसूरत होने वाली है। क्या कमाल की बॉडी बनाई हुई है तुमने, ऐसे ही इतने हॉट लगते हो, पर कसम से जब तुम शर्टलेस होते हो तो बिजलियाँ गिराते हो, कमाल लगते हो यार, जी करता है बस तुम्हें देखती ही जाऊँ। वैसे तुमने टी शर्ट क्यों पहन ली, थोड़ी देर देखने देते ना मुझे, पहली बार मैंने इतनी अच्छी बॉडी इतने करीब से देखी है, वरना टीवी में हीरो की बॉडी ही देखी थी। आन्या अपनी ही धुन में मग्न बोले जा रही थी और अन्वय उसकी बातें सुनकर हैरत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, अजीब बेशरम लड़की है, किसी चीज से शर्माती ही नहीं है। इसके सामने ऐसे आने में मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगा था, पर इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उल्टा कह रही है कि उसे और देर मेरी बॉडी देखनी है। मतलब दुनिया में ऐसी लड़कियां भी हैं, स्ट्रेंज। आन्या अब उसके पास आ गई और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, अन्वय एक बार अपनी टी शर्ट उतार लो, मुझे तुम्हारी एक फोटो लेनी है। उसकी बात सुनकर अन्वय अपने ख्यालों से बाहर आया और आन्या को घूरते हुए बोला, बहुत बेशरम हो तुम, मुझे तो शक है कि तुम लड़की हो भी या नहीं। अरे मैं लड़की ही हूँ, मुझे देखकर नहीं पता चल रहा क्या? इतनी खूबसूरत लड़की हूँ मैं, चाहे तो टेस्ट करके देख लो, मैं सच में लड़की हूँ। आन्या एक बार फिर फ्लो फ्लो में जो मुंह में आया सब बोल गई। उसकी बात सुनकर पहले तो अन्वय हैरानी से उसे देखने लगा, फिर उसने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है, जानती भी हो क्या कह रही हो? तुम चाहती हो मैं तुम्हें टेस्ट करूं कि तुम लड़की हो या नहीं? आर यू आउट ऑफ योर माइंड और इनसेन? उसकी बात सुनकर तो आन्या का मुंह हैरानी से खुल गया। उसने झट से सफाई देते हुए कहा, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, वो तो मेरे मुंह से निकल गया। तभी कहता हूँ अपनी कैची जैसी चलने वाली जुबान पर लगाम लगाओ, वरना किसी दिन अपनी बकवास करने की आदत की वजह से बहुत बुरा फंसोगी तुम, अन्वय ने उसे घूरते हुए कहा और उसके बगल से निकलकर जाने लगा तो आन्या ने पीछे से कहा, अरे सुनो ये तो बता जाओ कि कंधे पर कौन सा टैटू बना हुआ है, सच बड़ा ढांसू लग रहा था, मुझे भी बनवाना है। अन्वय ने उसकी बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और जाकर बाथरूम में घुस गया तो आन्या मुंह छोटा सा करके वापस बालकनी में आ गई। उसकी आंखों के आगे वो पल घूम गया जब उसने अन्वय को शर्टलेस देखा था। एक बार फिर उसका दिल जोरों से धड़क उठा और लबों पर मुस्कान ठहर गई। अन्वय कुछ 5 मिनट बाद ही बाहर आ गया। आज उसकी बारी थी और उसे कॉलेज भी जाना था, तो उसने जल्दी से घर साफ किया और जैसे ही खाना बनाने किचन में गया, आन्या भी वहां आ गई। आन्या ने उसे वहां देखा तो मुस्कुराकर बोली, तुम जाकर नहाकर रेडी हो जाओ, मैं बना लेती हूँ, वैसे भी सारा दिन खाली ही बैठना है मुझे। अन्वय उसके सामने आना नहीं चाहता था, तो वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आन्या को उसकी खामोशी कुछ अजीब लगी, पर फिर उसने सर झटका और खाना बनाने लगी। अन्वय नहाकर बाहर आया, आज वो टावल में ही बाहर आ गया था। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा वो अपनी शर्ट पहनने लगा तो उसके कानों में आन्या के कहे शब्द गूंज गए। उसने पहली बार खुद को शीशे में इतने गौर से देखा और आन्या की लालसा भरी निगाहें याद करके वो हंस पड़ा। फिर उसके दिमाग में उसका कहा सवाल आया और उसने मुड़ते हुए शीशे में अपने कंधे पर बना निशान देखा, जो जन्म के साथ ही उसके कंधे पर बना हुआ था, और वो कोई आम निशान या कोई टैटू नहीं था, बल्कि वैम्पायर का चिन्ह था। उसे देखते ही अन्वय की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी आंखों के सामने एक दृश्य घूम गया। फ्लैशबैक, अन्वय अपने बेड पर सो रहा था, तब उसकी उम्र कुछ 17-18 ही रही होगी। चेहरे पर एकदम सख्त भाव थे, जैसे कुछ भयानक सपना देख रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर अकड़ने लगा, कुछ ही पल में उसकी आंखें खुल गईं, एकदम गहरे नीले रंग की भयानक डरावनी आंखें। वो एकदम से खड़ा हो गया और अगले ही पल इंसान से एक वैम्पायर में बदल गया। काले कपड़े, नीली नीली आंखें। उसने जैसे ही मुंह खोला, दोनों तरफ से दो दांत बाहर निकल आए। ये पहली बार था जब वो इंसान से वैम्पायर बना था। रात के 12 बज रहे थे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और उस अंधेरे कमरे में अन्वय की नीली आंखें चमक रही थीं। अन्वय कुछ समझता उससे पहले ही वो एक चमगादड़ में बदल गया और कमरे में यहाँ से वहाँ उड़ने लगा। इस वक्त वो अपने वश में नहीं था।
एक साया उसके रूम की खिड़की से चिपका हुआ था। अन्वय को वैम्पायर बनता देख वो साया चमगादड़ बन गया और वहां से उड़ गया। कुछ ही मिनट बाद उस कमरे में एक साथ 3 नीली आंखें नजर आने लगीं। नीली आंखों को देखते ही अन्वय एकदम नॉर्मल हो गया। उसे कुछ याद ही नहीं रहा कि अभी अभी हुआ क्या था। वो हैरान परेशान सा उन नीली आंखों को देखने लगा। देखते ही देखते उसके सामने दो आकृतियां उभर आईं। एक औरत थी तो दूसरा उसी की उम्र का लड़का। अन्वय ने उन्हें हैरानी से देखते हुए कहा, कौन हैं आप और यहां मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? हम आपकी माँ हैं अन्वय, उस औरत की ममता से लिप्त आवाज अन्वय के कानों में पड़ी तो एक पल को अन्वय उन्हें देखता रह गया। फिर उसने उन पर से नजरें हटाते हुए कहा, आप शायद गलत जगह और गलत इंसान के पास आ गई हैं। मैं आपका बेटा नहीं हूं, मेरे मम्मी पापा सालों पहले मुझे छोड़कर जा चुके हैं। हम झूठ नहीं कह रहे अन्वय, आप हमारे ही बेटे हैं। जब आपका जन्म हुआ था तब हम आपको यहाँ छोड़ गए थे ताकि अपने दुश्मनों से आपको बचा सकें। जिन्हें आप अपने मम्मी पापा समझ रहे हैं उन्होंने सिर्फ आपको पाला है, आपको हमने जन्म दिया है और उन्हें हम ही आपको सौंप कर गए थे, इस वादे के साथ कि जब आप 18 के हो जाएंगे और आपको आपकी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी तो हम आपको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएंगे, जहां पर सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। उस लेडी ने अन्वय को समझाने की कोशिश की, पर अन्वय ऐसे किसी अनजान की कही बातों पर भला कैसे विश्वास कर लेता। उसने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में बोला, आप जो भी हैं और जिस भी वजह से यहां आई हैं, यहां से चली जाइए, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं। आप एक इंसान नहीं वैम्पायर हैं, आप हमारे समुदाय के युवराज हैं। आपकी जान की रक्षा के लिए हम आपको यहाँ छोड़कर गए थे ताकि जब तक आपको आपकी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो जाती और आप हमारे दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाते, आप यहाँ सुरक्षित रहें, एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी बिताएं। आज आप 18 के हो गए हैं, इसके साथ ही आपको आपकी सारी शक्तियां प्राप्त हो गई हैं, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। आपके कुटुंब को आपकी जरूरत है। वक्त आ गया है कि अब आप अपनी असली पहचान को समझें और अपने दायित्वों का निर्वाह करें। आपके पिताजी की अनुपस्थिति में अपने साम्राज्य की रक्षा करना आपका फर्ज है। वैम्पायरों की मल्लिका अनामिका जी ने उसे फिर से समझाया, पर अन्वय उनकी किसी बात पर विश्वास करने को राजी नहीं था, तो उन्होंने अपना हाथ रोल किया। इसके साथ ही एक तेज रोशनी उस कमरे में पहुंच गई। अन्वय को अब जंगल के बीच एक महल के विशाल कक्ष में लेटी अनामिका जी नजर आने लगी। उसने अपना जन्म होते देखा। अनामिका जी उसे यहां उसके माँ बाप को सौंपकर वापस अपने महल में चली गईं। अन्वय ने ये भी देखा, पर उसने फिर भी उन पर विश्वास नहीं किया। अनामिका जी ने अब उसके माथे पर अपना अंगूठा रख दिया। अन्वय की पलकें बंद हो गईं और उसके सामने कुछ देर पहले वाला उसका रूप आ गया। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। अब भी आपको लगता है कि हम असत्य कह रहे हैं? आप एक वैम्पायर नहीं हैं? अनामिका जी आशा भरी नजरों से उसे देख रही थी। अन्वय की आंखों के सामने वो सब घूमने लगा जो उसने अभी अभी देखा था। उनकी एक एक बात उसके कानों में गूंजने लगी। इतना बड़ा राज उसके सामने खुला कि उसका दिमाग बंद पड़ गया। उसने अपने कानों को अपनी हथेलियों से दबा लिया ताकि वो आवाजें उसे ना सुनाई दे और गुस्से से चिल्लाया, हाँ, आप झूठ कह रही हैं। ये सब आपका बनाया कोई भ्रमजाल है। मैं एक आम इंसान हूँ और मेरे मम्मी पापा सालों पहले मुझे छोड़कर जा चुके हैं। मैं नहीं मानता आपकी इस मनगढ़ंत कहानी को। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, चली जाइए मेरे घर से और दोबारा कभी मेरे सामने मत आइएगा। उन्होंने अन्वय को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अन्वय ने उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। आखिर में वे उम्मीद हारकर वहां से चली गई। उस दिन के बाद अन्वय को अपने अंदर बहुत से बदलाव नजर आए जो उसे आम इंसानों से अलग बनाते थे। वो बहुत तेज गति में भागता था, देखते ही देखते आंखों के सामने से गायब हो जाता था। उसे गुस्सा आता तो उसकी आंखें नीली हो जाती, दांत बाहर आ जाते थे, किसी को छूता तो उसके मन की बात पढ़ लेता था, और भी बहुत से बदलाव थे। धीरे धीरे उसे विश्वास होने लगा था कि वो सच में एक वैम्पायर है। उसने इस पर बहुत रिसर्च भी की, अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करना भी सीख गया, पर फिर भी उसने इंसानी जिंदगी जीना ही ठीक समझा। इंसानों के बीच इंसान बनकर रहता, कभी बहुत बेचैनी होती तो चमगादड़ बनकर जंगल में पहुंच जाता और अपने असली रूप में आ जाता। उस रात भी वो मौसम का मजा लेने जंगल गया था जब आनिया से उसकी मुलाकात हो गई। अन्वय सही सब सोच रहा था, अचानक ही उसके कानों में आनिया की आवाज पड़ी, कमिंग सून।